Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
जैसे कोई फिल्म चल रही हो तो उसमें पहले कुछ दिखलाई पड़ेगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये बाद बाद बाद, यही तो टाइम है ना, इसको काल बोलते हैं। तो ये माया जो है पहले काल का निर्माण करती है और उसमें काल के बाद में फिर ये आकाश, आकाश देखो, फिर वायु देखो, फिर अग्नि देखो, फिर जल देखो, फिर पृथ्वी देखो, एक के बाद एक देखते जाओ। दिख रहा है, ये सिनेमा चल रहा है, है असल में क्या? तो स्वामी रामानंद जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, ओंकारेश्वर वाले स्वामी रामानंद जी महाराज, उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो है वो सिनेमा देखने गया, बाप के साथ गया। अब वो सिनेमा शुरू हो चुका था तो जाके बैठ तो गए, अब सिनेमा चल रहा था तो बीच में इंटरवल हुआ तो तस्वीरें आनी बंद हो गई पर्दे पे। तो उसने पूछा पिताजी से, ये तस्वीर कहां से आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही हैं? बोले तस्वीर तो वहां थी, पीछे को उसने मुंह करके कहा, ऑपरेटर रूम में थी, वहां एक मशीन है, उस मशीन में वो तस्वीरें भरी हुई हैं और उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है और उनसे इस पर्दे के ऊपर ये तस्वीरें दिखलाई पड़ती हैं। बोले मेरी समझ में नहीं आता, मुझे तो दिखा दो। बोले अच्छा, शो खत्म हो गया। अब उसको लेकर वो ऑपरेटर से उसने विनती की पिताजी ने कि भाई इसको समझाओ कैसे भी, तो उसने कहा इसको मेरे पास छोड़ दो, अब दूसरा शुरू होगा ना तब बताऊंगा। तो पर्दा खाली था, अब वो बैठा था बच्चा, उसने कहा देखो खाली है नहीं क्या, हाँ अब देखो इसमें से प्रकाश की किरणें निकलेंगे और इसमें ये फिल्म लगी हुई है, इस फिल्म के ऊपर ये पड़ेंगे और फिर देखना पर्दे पे आती है कि नहीं आती। देख लिया उसने, बोले हाँ आती है। वो तसल्ली हो गई उसके, तो बोले वहां तो तसल्ली हो गई उस बच्चे को, लेकिन इस संसार में भी तो ऐसा ही हो रहा है, ये कोई फिल्म चल रही है नारायण, और उसमें जो आत्म प्रकाश है उस प्रकाश के द्वारा वो छाया चित्र हम सामने इस आकाश रूपी पर्दे के ऊपर देख रहे हैं। और तारीफ की बात यह है कि ये आकाश भी पोलम पोल है कुछ नहीं, इस है कुछ नहीं के ऊपर कुछ 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 मालूम पड़ रहा है। अच्छा, एक मनुष्य को जैसी दुनिया दिखती है, क्या एक गाय को भी वैसी दुनिया दिखती है? और छोड़ दो, मां बाप को जैसी दुनिया दिखती है वैसे बेटे को दिखती है क्या? जैसे गुरु को दिखती है वैसे शिष्य को दिखती है क्या? वो महाराज श्री कहते थे कि जब गुरु की तरह से दिखाई पड़ने लगे ना, तब समझना चाहिए कि हमारा ज्ञान पूरा हो गया। अगर गुरु से मतभेद है, बोले गुरु जी तो ऐसे बोलते हैं, हमको तो ऐसे मालूम पड़ता, हम तो ऐसे ही मानेंगे, तो गुरु जी से मतभेद हुआ ना, इसका मतलब है कि तुम उस स्थान तक पहुंचे नहीं अभी, तो मतभेद मत करो, उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश करो। तो एक के बाद एक ये सीक्वेंशियल फिल्म चल रही है नारायण, कब तक चलेगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, सुषुप्ति में क्यों नहीं दिखलाई पड़ती है दुनिया? प्रकाश तो वहां भी रहता है, और ये जो बाहर का आकाश है ये भी रहता है, लेकिन वहां जो चिदाकाश जो अपने को प्रोजेक्ट करता है, इस बाहर के आकाश में चिदाकाश अपने को पहले प्रोजेक्ट करता है तब ये दुनिया दिखती है। जैसे सपने के आकाश में अपने को प्रोजेक्ट करते हैं तब सपना दिखता है, और सुषुप्ति में प्रोजेक्शन नहीं होता आकाश के रूप से, जब पर्दा ही नहीं है तो फिल्म किस पर चलेगी, संस्कार तो है वहां लेकिन पर्दा नहीं रहता। ब्रह्म की जो अन्यथा प्रतीति है उसी को आकाश बोलते हैं। अपने यहां तो वेदांत में एक साधन का नाम ही है आकाश चिंतन। ब्रह्म चिंतन कैसे करें, तो बोले आकाश चिंतन करो। आकाश चिंतन कैसे करें, तो बोले पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं, वो वायु नहीं है, अब क्या बचा, भाव करो क्या बचा। तो बोले कुछ नहीं बचा। बोले अब इस कुछ नहीं को देखो, अब क्या बचा। कुछ नहीं को देखने वाला ही बचा। वो कुछ नहीं देखने वाला कौन है, बोले मैं विश्वात्मानंद। बोले गलत, मैं ब्रह्म, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। और ये तो नाम व्यवहार के लिए कुछ ना कुछ रख लेते हैं, इनसे अगर आपको अपनी परिच्छिन्न इकाई मालूम पड़ती है तो अभी ज्ञान में कमी है। तो ये हो गया कि आकाश है संभूता, माने आकाश का प्रोजेक्शन हो गया ब्रह्म से, वो ब्रह्म ही आकाश के रूप में होता है। फिर उसी में दूसरी प्रतीति होती है वायु की। अब इनके गुण माने गए हैं, ये प्रक्रिया की बातें हैं। प्रक्रिया जो होती है वो समझाने के लिए होती थी। महाराज जी ने कहीं बोला है, किसी ने पंचदशी की बड़ी तारीफ की तो महाराज जी ने बोला कि हम लोग पंचदशी को घास फूस मानते हैं। अब सुनने वाले को तो बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसके मन में तो पंचदशी की बड़ी महिमा बैठी थी। है भी महिमा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया है ना। अगर प्रक्रिया को ही आप सिद्धांत मान लोगे तो कभी सिद्धांत का अनुभव होगा। सिद्धांत का अनुभव करने के लिए प्रक्रिया होती है। अब बोले कि वो चैतन्य का बुद्धि में अंतःकरण में आभास पड़ रहा है। अब कोई भी बुद्धि, जो भी तार्किक बुद्धि होगी, विचारक बुद्धि होगी, वो ये स्वीकार नहीं कर सकता है कि निर्गुण निराकार निरवयव वस्तु का प्रतिबिंब कहीं पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता। तो वहां कुछ आभास का मतलब दूसरा है। वहां आभास माने प्रतिबिंब या परछाई नहीं है। अब आप सोचते रहोगे कि क्या मतलब है, तो हिंट दे देता हूं कि आभास का मतलब परछाई नहीं है। आभास माने होड़ मारना, जिसको अपने गांव की भाषा में बोलते, सिमिलरिटी। जैसा चैतन्य है वैसा। तो बुद्धि जो है वो अत्यंत सत्वगुणी होने के कारण जब वो आत्मा के बारे में सुनती है, विचार करती है, तो वो अपने ही को आत्मा मानने लगती है। मानना तो चाहिए था उसे ये कि इस बुद्धि के भावाभाव का जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है वो आत्मा है, मानना तो ऐसा चाहिए था। लेकिन बोले जो अब समझाने वाले तो ऐसा समझाते हैं ना कि जो जानता है सो ही आत्मा है। अब ये प्रक्रिया है कि जो जानता है सो ही आत्मा है। तो बुद्धि कहती है मैं जानती हूं इसलिए मैं आत्मा हूं। तो ये विज्ञान आत्मा को ही आत्मा लोग मान लेते हैं। तो प्रक्रिया को यदि ठीक ढंग से न ग्रहण किया जाए तो
तो वो सिद्धांत में परिणत नहीं होते। तो अब यह हुआ कि अंत में पृथ्वी तत्व तक आ, इनमें गुणों की कल्पना की गई है। आकाश में एक गुण है शब्द, वायु में दो गुण है शब्द और स्पर्श, और अग्नि में तीन गुण है शब्द स्पर्श और रूप, और जल में चार गुण है शब्द स्पर्श रूप और रस, और पृथ्वी में पांच गुण है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अब यहां तक आ गए। अब बोले कि पृथिव्या औषधया। अब पृथ्वी तत्व जब बन गया तो उससे ये औषधियां बनी। औषधि माने वनस्पति को बोलते हैं। वनस्पति के तो बीज होते हैं, सबके बीज होते हैं। तो अगर पृथ्वी तत्व न बने तो बीज कहां से बने? बीज में जो आवरण है वो तो पृथ्वी तत्व ही है, और जो उसमें संस्कार हैं वो नारायण, कुछ जल तत्व के हैं, कुछ अग्नि तत्व के हैं, कुछ वायु तत्व के हैं, कुछ आकाश तत्व के हैं, कुछ ब्रह्म तत्व के हैं, कुछ माया तत्व के हैं। इन सबके संस्कारों को लेकर के वो बीज बनता है। बस उन्हीं से फिर ये विविध सृष्टि हो गई। अब सात प्रकार के अन्न जो हैं उनका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है। बोले देवताओं के अन्न हैं दो, हुत और प्रहुत, ये उनके मन नाम है। देवताओं के दो अन्न हैं, एक हुत और एक प्रहुत। जैसे आपने थाली आई सामने और कह दिया इंद्राय स्वाहा, अब नारायणम नारायणाय समर्पयेत, ऐसा बोल दो, एक ही बात है। तो वो नारायण को गया, वो इंद्र को गया। तो जिस देवता का नाम लेकर के समर्पण करोगे तो ये उस देवता को मिल जाएगा। ये तो हुत हो गया। और प्रहुत जो है, जो बाकायदा अग्नि में विधि के अनुसार बोले इस यज्ञ में इसी चीज की आहुति लगेगी, दूसरी चीज की आहुति नहीं लगेगी, तो वो प्रहुत है, माने विशेष रूप से जिनकी आहुति दी जाती है। हुत और प्रहुत ये देवताओं के अन्न है। और मनुष्य के अन्न है गेहूं है, जौ है, चावल है, ये मनुष्य के अन्न है। वहां कहीं ये नहीं लिखा है कि मांस आदि जो है ये अन्न है। सात अन्नों में मांस की गिनती कहीं नहीं है ना। बोले पशुओं में होगी शायद, तो बोले नहीं पशुओं में भी नहीं है। पशुओं में लिखा है उनका अन्न है पय, दूध। वो गांधी जी कहते थे ना कि मैं बकरी का दूध नहीं पीऊंगा, वो पहले दूध ही नहीं पीऊंगा। बोले क्यों नहीं पिएंगे? कि ये भगवान ने दूध जो बनाया है ये तो उसके बच्चे के लिए बनाया है, तो मैं उस दूध को नहीं पीऊंगा। बड़ी मुश्किल से जब उनका स्वास्थ्य में गड़बड़ हुई तो बकरी के दूध पीने के पे राजी हुए। तो पशुओं का अन्न है पय। और बोले आत्मा का भी अन्न है। आत्मा माने जीवात्मा। जीवात्मा का क्या अन्न है? तो बोले प्राण है, मन है और विज्ञान है। इस प्रकार से ये सात अन्नों की उत्पत्ति होती है। अब इनमें जब मनुष्य को पैदा, मन खाने वाला पीछे पैदा करता है भगवान, पहले खाद्य सामग्री पहले पैदा हो जाती है। ये ऐत्रेय उपनिषद में तो साफ ही लिखा है, पहले भगवान ने ये सब चीजें वनस्पतियां बनाई और फिर मनुष्य की सृष्टि की। तो महाराज जी तो कहते थे कि जिसने पेट बनाया है उसी ने खाद्य सामग्री भी बनाई है। अगर इस पेट के लिए कहीं खाद्य सामग्री न होती तो पेट ही न बनता। तो ये पेट बनाया है तो खाने की चीज भी भगवान ने बना दी। तो ये सब अन्न ही कहलाते हैं। तो पंचभूतों से बीज बने, बीज से फिर ये औषधियां बनी, इन औषधियों को फिर स्त्री पुरुषों ने खाए, और वो चाहे मनुष्यों ने खाए, चाहे पशुओं ने खाए, चाहे किसी भी जाति प्रजाति वालों ने खाए, तो सबके पुरुषों में भी वीर्य बना, स्त्रियों में भी रज बना, और फिर जब दोनों मिले तो फिर आगे के संतान हुई, तो ये संतान के शरीर बन गए। अब कहते हैं कि ये जो शरीर अन्नात पुरुषा, अन्न से ये पुरुष, अब पुरुष शब्द पे कोई आपत्ति ना करे कि स्त्री क्यों नहीं लिखा, तो इसमें भाष्यकार ने लिख दिया है कि यहां पुरुष का मतलब पुरुष से नहीं है, प्राधान्यता। चूंकि शास्त्र के कर्मकांड में पुरुष को ही प्रधानता दी गई है, इसलिए पुरुष किया गया है। और आज के जो विचारक हैं वो कहते हैं पुरुष का मतलब पुरुष शरीर, स्त्री भी पुरुष ही है, वो मर्द औरत वाला पुरुष नहीं है। जो सांख्यों का पुरुष और प्रकृति है वो तो सब एक ही बात है, तो सिर्फ शरीर का फर्क है, उसमें जो भोक्ता है वो एक ही है, वो निराकार है, होता है, वो जिस शरीर में जाता है उसी के आकार का बन जाता है, मानने लगता है। अन्नात पुरुषः, अब वो बोले ये पुरुष क्या है कि सवा एष पुरुषो अन्न रसमयः। अब ये जो पुरुष है ये अन्न रसमय है, माने अन्न से बनता है, फिर उस अन्न का रस बनता है, सप्त धातुएं बनती हैं, तब ये शरीर बनता है। यहां पुरुष मन पुरुष का शरीर। अब कहां से चले नारायण और कहां पहुंच गए, ब्रह्म से चले थे तस्माद वा आ गए इस शरीर में, तो बोले ये उपनिषद का क्या सोचने का ढंग है। बोले सोचने का ढंग ये है कि एकाएक आप ब्रह्म को नहीं पकड़ सकते, आप शरीर को ही आत्मा मानते हो, और ब्रह्म में यद्यपि शरीर नहीं है लेकिन उसमें भी शरीर की कल्पना करते हो। अब ये जितने उपास्य देवों के शरीर हैं ये सब शास्त्र ने कल्पित करके हमको दिए हैं ना, किस लिए कि हमारी बुद्धि जो है वो आकार को ही पकड़ती है, अभ्यास ऐसा है। तो ये अन्नमय कोष जो है ये पहला आत्मा है, पहला ब्रह्म यही है अन्नमय कोष जो है, तो इस अन्नमय कोष की सिद्धि के लिए ये सारा प्रक्रिया जो है बताई कि ब्रह्म से आकाश, आकाश से फिर पृथ्वी, और फिर अन्नात पुरुष, पुरुष से सपुरुषो अन्न रसमयः। अब बोले भाई खोल के बताओ, तो अब इसको नाटक के रूप से बताते हैं। तस्य इदमेव शिरः, अपने सिर पर हाथ रखो। बोले यही इस पुरुष का सिर है, ब्रह्म का सिर है ये, अपना सिर मत मानो इसे नारायण, ये है तो तुम्हारा सिर है वैसे व्यवहार में, लेकिन ये ब्रह्म का सिर है। इदमेव शिरः अयम दक्षिणः पक्षः, ये जो सीधा हाथ है तुम्हारा ये ब्रह्म का दायां पंख है, पक्ष। और फिर ये जो बायां हाथ है ये उत्तरः पक्षः, और ये जो धड़ है तुम्हारा ये आत्मा है, आत्मा माने सार, किसी का धड़ ना हो और सिर सिर हो तो कौन सा ग्रह होगा वो राहु होगा अनिष्ट ग्रह माना जाता है, बिना धड़ का सिर जो होता है, और बिना सिर का धड़ हो तो वो केतु हो जाएगा, वो भी अनिष्ट ग्रह रह रहे हैं। तो अयम आत्मा इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, अब ये सारा शरीर किसके ऊपर आधारित है, प्रतिष्ठा माने ठहरा किसके ऊपर हुआ है ये, तो बोले टांगों के ऊपर, तो ये नाभि से नीचे का जितना हिस्सा है ये सारा का सारा ये इसकी प्रतिष्ठा है। तदप्येषो श्लोको भवति, इसके बारे में अभी एक श्लोक और कहना है श्रुति को नारायण। ये श्लोक तो यहां तक हो गया, अब इसको याद रखना। अभी इसमें कहां तक पहुंचे हैं कि अन्नमय कोष, अभी कोष ये नाम नहीं दिया है, अभी नाम देंगे, कल को देंगे। तो ये जो शरीर है ये शरीर परमात्मा की विभूति है, इसको गाली देने से काम नहीं चलता है। वैसे तो सब संतों ने इस शरीर की निंदा ही की है, कितना भी अच्छे से अच्छा शरीर हो, लेकिन ये परमात्मा को जानने का कोई साधन ही नहीं होता यदि ये शरीर ना होता तो। अगर इस शरीर में बुद्धि ना होती तो आप किससे जानते, आपके पास कोई कारण ही नहीं होता। एक सज्जन बोले ये तो खाली बुद्धिवाद है, तो मैंने कहा तुम कौन से वादी हो ये बताओ, हम तो बुद्धिवादी हैं, तुम कौन से वादी हो, तुम मनोवादी हो कि इंद्रियवादी हो। अरे जौन से भी वादी हो उससे तो बढ़िया ही है, बुद्धिवादी हैं, क्योंकि बुद्धि से भीतर तो और कुछ नहीं है। यो बुद्धे परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है वो तो आत्मा है, यही तो जानना है। तो बुद्धि में तो बैठ जाना पहले। तो ये भगवान की विभूतियां हैं नारायण। विभूति माने विशेष, विशेष रूप से जहां परमात्मा का प्राकट्य होता है, विशेष भूति, विशेष रूप से प्रकट होना, उसको विभूति बोलते हैं। यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जित मेव वा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जहां जहां कोई विशेषता देखो, समझ लो मैं ही प्रकट हो रहा हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात। इसलिए इस शरीर को निरादर नहीं करना चाहिए, इस शरीर का फायदा उठाना चाहिए, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें और स्वस्थ विचार करें। ऐसा विचार करें जिससे कि हम स्व स्थित हो जाएं, अपने में स्थित हो जाएं, वही स्वस्थता है। और जो पराई चर्चा है वो तो रोग है नारायण, वो तो कम से कम हो, उसी में कल्याण है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।